नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो धुंधली है, थोड़ी रहस्यमयी भी है, और जहाँ ज्ञान की रोशनी भी है और उसका अंधेरा भी। हम बात कर रहे हैं उम्बेर्तो इको के कालजयी उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की।
वाह, द नेम ऑफ द रोज, ये वाकई सिर्फ एक जासूसी कहानी तो है ही नहीं।
बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब 14वीं सदी का इटली है और उस पृष्ठभूमि में आस्था, तर्क, सच और वो संकेत,
हाँ संकेत,
जिनकी गुत्थी हम हमेशा सुलझाने की कोशिश करते हैं,
उनके बीच की एक कह सकते हैं बड़ी बौद्धिक किस्म की भूल भुलैया है ये।
बिल्कुल।
सोची जरा, नवंबर 1327 का समय है, उत्तरी इटली का एक वीरान पहाड़ी इलाका, और वहां एक विशाल बेनेडिक्टीन मठ है जो दुनिया से लगभग कटा हुआ सा है।
और बाहर माहौल कैसा है?
बाहर तो पोप और सम्राट के बीच सत्ता का संघर्ष वो अपने चरम पर है, और उसकी गर्मी, उसकी तपिश इस मठ की दीवारों तक भी पहुंच रही है।
अच्छा।
और इसी तनाव भरे माहौल में विलियम ऑफ बास्करविल और उनके युवा शिष्य एड्स ऑफ मिल्क इस मठ में आते हैं।
और आते ही क्या पाते हैं?
पाते हैं कि वहां मौत का साया मंडरा रहा है।
तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी कहना नहीं है, बल्कि इको ने जो ये जटिल ताना बाना बुना है ना, उसे परत दर परत खोलना है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक जासूसी कहानी के ढांचे में इको ज्ञान की प्रकृति, कट्टरता के क्या खतरे हो सकते हैं, और सत्य की जो मायावी खोज है, वैसे गहरे सवालों से जूझते हैं।
और कमाल की बात यह है कि ये 14वीं सदी की कहानी होकर भी आज इतनी ज्यादा प्रासंगिक लगती है।
सही कहा, शायद इसलिए कि जो संघर्ष इको दिखाते हैं, तर्क बनाम कट्टरता, ज्ञान को दबाने की कोशिशें, वो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं मौजूद है।
हाँ बिल्कुल, और इस अद्भुत कृति के पीछे जो लेखक हैं उम्बेर्तो इको, वो भी तो कोई कम दिलचस्प शख्सियत नहीं थे।
अरे बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ उपन्यासकार नहीं थे, वो एक असाधारण बुद्धिजीवी थे।
हाँ, संकेत विज्ञानी, दार्शनिक, मध्ययुगीन इतिहास के प्रकांड पंडित,
और उनकी ये जो अकादमिक पृष्ठभूमि है वो उनके लेखन में साफ झलकती है।
इको का एक विचार था इंटरटेक्सचुअलिटी का।
हाँ,
कि कैसे हर टेक्स्ट, हर कहानी दूसरी कहानियों और विचारों से जुड़ी होती है, उनसे बात करती है।
बिल्कुल, कोई कहानी अकेली नहीं होती। और द नेम ऑफ द रोज जो 1980 में आया,
हाँ,
वो उनका पहला उपन्यास था।
पहला उपन्यास, और आते ही उसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया।
हाँ, ये एक तरह का सबूत था कि गंभीर बौद्धिक साहित्य भी रोमांचक और यू नो लोकप्रिय हो सकता है।
तो चलिए उस मठ के दरवाजे से अंदर चलते हैं। कहानी शुरू होती है विलियम और एड्सो के आगमन से।
वो वहां पहुंचे क्यों थे?
वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक बहस के लिए आए थे, ईसा मसीह की गरीबी के मुद्दे पर।
अच्छा, ये बहस सिर्फ धार्मिक नहीं रही होगी।
नहीं बिल्कुल नहीं, ये राजनीतिक भी थी। चर्च की सत्ता, उसकी संपत्ति, उन सब चीजों से जुड़ी हुई थी। लेकिन उनके पहुंचते ही मठ के जो मठाधीश हैं एबट, वो उनके सामने एक और ज्यादा गंभीर समस्या रख देते हैं।
और वो क्या थी?
एक युवा चित्रकार एडेलमो, उसकी रहस्यमयी मौत हो गई है। उसका शव मीनार के नीचे चट्टानों पर मिला है।
और यहीं से रहस्य का खेल शुरू होता है।
हाँ, क्या ये सिर्फ एक हादसा है या आत्महत्या, जैसा मठाधीश जताना चाह रहे हैं,
या फिर ये किसी गहरी, ज्यादा भयावह साजिश की बस पहली कड़ी है?
बिल्कुल, और इस सारे रहस्य के केंद्र में क्या है, वो अद्भुत, विशाल और बेहद डरावना सा पुस्तकालय।
हाँ, वो लाइब्रेरी, ज्ञान का भंडार तो है पर एक पहेली भी है।
एक ऐसी भूल भुलैया जहां जाने की इजाजत सबको नहीं है, और जहां लगता है कई राज दफन हैं।
और ये पूरी कहानी हमें कौन सुना रहा है?
ये कहानी हमें मिलती है बूढ़े एड्सो की जबानी। वो दशकों बाद अपनी जवानी के उस एक हफ्ते की घटनाओं को याद कर रहा है।
अच्छा, तो उसकी आवाज में अनुभव का बोझ होगा।
हाँ, खोई हुई मासूमियत का दर्द भी, और उन घटनाओं से जो ज्ञान मिला, शायद उसकी कड़वाहट भी। उसकी यादें ही हमारा रास्ता हैं इस कहानी में।
तो चलिए मुख्य पात्रों से मिलते हैं। सबसे पहले विलियम ऑफ बास्करविल।
हाँ, विलियम, अंग्रेज फ्रांसिस्कन तपस्वी। वो चश्मा पहनते हैं और उनकी नजरें चश्मे के पीछे भी बहुत तेज हैं।
वो सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, है ना?
नहीं, वो तर्क, अवलोकन, विज्ञान, इन सब में विश्वास रखते हैं। एक विचारक हैं।
उनका तरीका थोड़ा थोड़ा शर्लॉक होम्स जैसा लगता है।
हाँ बिल्कुल, और दार्शनिक विलियम ऑफ ओखम का भी प्रभाव उन पर साफ दिखता है।
और वो पहले जिज्ञासु, मतलब इंक्विजिटर भी रह चुके हैं।
हाँ, तो वो सत्ता के खेल और कट्टरता के खतरों को भी अच्छी तरह समझते हैं।
उनका मकसद सिर्फ कातिल को पकड़ना नहीं है।
नहीं, वो क्यों तक पहुंचना चाहते हैं, इन मौतों के पीछे की वजह क्या है, मठ मुझे जो डर फैला है उसका कारण क्या है?
और उनके साथ है एड्सो ऑफ मिल्क, हमारा कथावाचक।
हाँ एड्सो, एक युवा नौसिखिया जो ज्ञान की प्यास लेकर विलियम का शिष्य बनता है।
तो ये उपन्यास उसके लिए भी एक सफर है।
बिल्कुल, सिर्फ एक रहस्य सुलझाने का अनुभव नहीं बल्कि जीवन को समझने की यात्रा है, बिल्डिंग्स रोमन कह सकते हैं।
वो क्या क्या सीखता है इस दौरान?
वो पहली बार बौद्धिक चुनौतियों का सामना करता है, राजनीतिक दावपेंच देखता है और यहाँ तक कि शारीरिक प्रेम की तीव्रता का भी अनुभव करता है।
हाँ, मठ की रसोई में काम करने वाली उस किसान लड़की के साथ उसका जो संक्षिप्त सा रिश्ता बनता है।
हाँ, वो बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव है जो उसकी मासूमियत को हमेशा के लिए बदल देता है। वो प्रेम, सौंदर्य और उसके खो जाने का एक दर्दनाक सबक है उसके लिए।
तो एड्सो की ये जो व्यक्तिगत यात्रा है वो कहानी को एक मानवीय धरातल देती है।
बिल्कुल, वो विलियम के तर्क और अपने अंदर उठते जज्बातों के तूफान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन मठ में एक और ताकत है जो तर्क की इस रोशनी को शायद बुझा देना चाहती है।
हाँ, और वो है जॉर्गे ऑफ बर्गोस।
जॉर्गे, बूढ़ा अंधा तपस्वी, वो पहले लाइब्रेरियन था ना?
हाँ, और अब भी वो उस पुस्तकालय और मठ की रूहानी दुनिया का जैसे एक अनकहा पहरेदार है।
और उसका अंधापन वो सिर्फ शारीरिक नहीं लगता?
नहीं, वो वैचारिक भी है। वो जानबूझकर नए विचारों, नए सवालों से आंखें बंद किए रखता है। वो कट्टर आस्था का प्रतीक है।
उसे डर किस चीज से लगता है?
उसे हर उस चीज से डर लगता है जो स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाती हो।
और उसका ये डर एक खास किताब पर केंद्रित है।
हाँ, अरस्तु की कविताओं पर लिखी वो दूसरी खोई हुई किताब जो हास्य यानी कॉमेडी पर आधारित है।
वो हास्य से क्यों डरता है?
जॉर्गे का मानना है कि हंसी इंसान को निडर बनाती है, वो ईश्वर के डर को कम करती है और उसके हिसाब से बिना डर के सच्ची आस्था हो ही नहीं सकती।
तो वो इस खतरनाक ज्ञान को दुनिया से छुपाना चाहता है।
अडेल्मो के बाद यूनानी अनुवादक विनेंटियस का शव मिलता है।
कहाँ?
सुअर के खून के एक पीपे में। फिर सहायक लाइब्रेरियन बेरिंगर, वो पानी के टब में डूबा हुआ पाया जाता है।
हर मौत पिछली से ज्यादा भयानक।
हाँ, और ज्यादा प्रतीकात्मक भी लगने लगती है। मठ में ये कानाफूसी शुरू हो जाती है कि कहीं ये बाइबल के सर्वनाश, अपोकलिप्स में लिखी भविष्यवाणियां तो सच नहीं हो रही।
ये सर्वनाश पैटर्न वाला आइडिया दिलचस्प है। विलियम भी शुरू में इसे एक सुराग समझता है ना?
हाँ, वो सोचता है शायद ये कोई दैवीय योजना है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ संयोग है जिसे डरे हुए लोग एक पैटर्न की तरह देख रहे हैं?
और यहीं इको संकेत और उनकी व्याख्या, मतलब साइंस एंड इंटरप्रिटेशन के विषय को खोलते हैं।
सही का, क्या दुनिया हमें संकेत देती है या हम अपने डर और अपनी समझ के हिसाब से संकेतों को मतलब देते हैं? विलियम का तर्क उसे इसी सवाल से जूझने पर मजबूर करता है।
इसी बीच कहानी में एक और मोड़ आता है। सेवेरिनस, जो जड़ी बूटी विशेषज्ञ है।
हाँ, वो विज्ञान और तर्क का एक और प्रतीक है मठ में।
वो विलियम को एक अजीब पुरानी यूनानी किताब के बारे में बताता है जो उसे बेरिंगर के कपड़ों से मिली थी।
लेकिन इससे पहले कि वो किताब विलियम तक पहुंचे, सेवेरिनस की भी हत्या हो जाती है।
ओहो, और किताब?
किताब गायब। अब विलियम का शक और गहरा हो जाता है कि यही रहस्यमयी किताब इन सारी मौतों के केंद्र में है।
और तभी माहौल और बिगड़ जाता है।
हाँ, जब बर्नार्ड गुई, एक बहुत ही निर्मम और ताकतवर जिज्ञासु, पोप के प्रतिनिधि मंडल के साथ मठ पहुंचता है।
गुई का मकसद क्या है? सच्चाई जानना?
नहीं, उसका मकसद सच्चाई जानना नहीं लगता। वो तो विधर्मियों को ढूंढकर सजा देना चाहता है, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है।
वो आते ही क्या करता है?
वो आते ही मठ के कुछ कमजोर लोगों को निशाना बनाता है, जैसे साल्वतोर और रेमिगियो, जिनका अतीत थोड़ा संदिग्ध रहा है, और उस बेचारी लड़की को भी गिरफ्तार कर लेता है जिससे एड्सो मिला था।
तो ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। यहाँ विलियम का तर्क, उसकी जांच का तरीका, वो गुई की सत्ता और कट्टरता के सामने जैसे बेबस हो जाता है।
हाँ बिल्कुल, यातना और डर के आगे सच कहाँ टिक पाता है? ये तर्क बनाम सत्ता का एक सीधा बहुत क्रूर टकराव है। एड्सो ये सब देखकर डर और निराशा से भर जाता है।
विलियम को अब लगने लगता है कि कातिल शायद कोई इंसान नहीं बल्कि वो किताब खुद है। उसे शक होता है कि पन्नों पर जहर लगा है।
हाँ, और इसी बीच लाइब्रेरियन मलाकी, जो लगता था कि जॉर्गे का ही आदमी है, वो प्रार्थना के दौरान अचानक मर जाता है।
कैसे?
उसकी जुबान काली पड़ चुकी थी, जहर का साफ संकेत।
तो अब विलियम और एड्सो के पास कोई चारा नहीं बचता, उन्हें पुस्तकालय के आखिरी रहस्य तक पहुंचना ही होगा।
हाँ, वो गुप्त कमरा फिनिस अफ्रीकाए, यानी अफ्रीका का अंत।
सातवें दिन की रात को वो आखिरकार उस भूल भुलैया जैसे पुस्तकालय के दिल तक पहुंच जाते हैं।
हाँ, और उस गुप्त कमरे में उनका सामना होता है जॉर्गे ऑफ बोर्गोस से।
और उसके हाथ में वही किताब है।
हाँ, वही जहरीली प्राचीन किताब अरस्तु की कॉमेडी पर लिखी अकेली बची हुई कॉपी। हाँ, यही होता है अंतिम टकराव।
जॉर्गे क्या कहता है?
वो मान लेता है कि उसी ने मौतों का ये जाल बुना था ताकि ये खतरनाक किताब किसी के हाथ न लगे।
और मौतों का तरीका?
वो बताता है कि उसने पन्नों पर जहर लगाया था ताकि जो भी उन्हें पलटने के लिए अपनी उंगली चाटे वो मर जाए।
एडेलमो, वेनेंटियर्स, बेरेंगर, मलाकी सब इसी का शिकार हुए।
हाँ, और सेवरिनस को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने किताब ढूंढ ली थी। ये ज्ञान को दबाने की मतलब पराकाष्ठा है।
और फिर अंत में क्या होता है जब विलियम किताब लेने की कोशिश करता है?
तो जॉर्गे एक बहुत भयंकर कदम उठाता है। वो किताब को नष्ट करने के लिए उसके जहरीले पन्नों को खुद खाना शुरू कर देता है।
क्या?
हाँ, और फिर एक दीपक से उस पूरे विशाल पुस्तकालय में आग लगा देता है।
हे भगवान,
मतलब सदियों का ज्ञान, दुर्लभ पांडुलिपियां, विचारों का वो पूरा खजाना
सब आग की लपटों में धूं धूं कर जलने लगता है।
ये सिर्फ एक इमारत का जलना नहीं है, ये सभ्यता के एक हिस्से का विनाश है। बहुत ही दुखद, दिल दहला देने वाला दृश्य है वो।
विलियम और एडसो बच निकलते हैं किसी तरह।
हाँ, वो आग और धुएं से बच निकलते हैं, लेकिन पीछे छोड़ाते हैं एक जलता हुआ मठ और राख होती हुई ज्ञान की पूरी विरासत।
इस विनाशकारी अंत के साथ कहानी हमें फिर से अपने मूल विषयों पर सोचने को मजबूर कर देती है। सबसे बड़ा तो वही आस्था बनाम तर्क का संघर्ष।
हाँ, जॉर्गे की कट्टर डरी हुई आस्था ने आखिरकार विनाश ही लाया, लेकिन क्या विलियम का तर्क पूरी तरह जीत पाया?
शायद नहीं, क्योंकि विलियम खुद अंत में ये मानता है कि उसने केस सुलझाया तो सही, लेकिन एक गलत पैटर्न, वो सर्वनाश वाले पैटर्न का पीछा करते हुए।
सही बात है, असल हत्यारा कोई शैतानी योजना नहीं थी, बल्कि जॉर्गे का डर और वो जहरीली किताब थी। मौतें किसी भव्य योजना का हिस्सा नहीं थी, वो तो मानवीय लालसा, डर और संयोग का नतीजा थी।
तो इको शायद ये कह रहे हैं कि तर्क जरूरी है, पर हमें उसकी सीमाओं को भी पहचानना होगा, और ये भी मानना होगा कि दुनिया हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं या समझना चाहते हैं।
बिल्कुल, और यहीं ज्ञान की शक्ति और उसके खतरे का सवाल फिर उठता है।
वो पुस्तकालय ज्ञान का प्रतीक था, पर वो एक कैद खाना भी बन गया। जॉर्गे को डर था कि कुछ विचार जैसे हंसी समाज के लिए खतरनाक है,
लेकिन उपन्यास इसी बात पे जोर देता है कि ज्ञान को दबाना या उसे नष्ट कर देना ये सबसे बड़ा पाप है। पुस्तकालय का जलना इसी त्रासदी को दिखाता है।
और वो हंसी वाला विचार, जॉर्गे हंसी से क्यों डरता था?
क्योंकि हंसी डर को चुनौती देती है, वो सत्ता पर सवाल उठाती है, वो इंसानों को बराबरी पर लाती है। अरस्तु की किताब शायद यही सिखाती।
तो इको के लिए हंसी एक तरह से बौद्धिक और आध्यात्मिक आजादी का हथियार है।
हाँ, जिसे कट्टरता बर्दाश्त नहीं कर सकती।
सत्य की खोज का भी सवाल है। क्या कोई एक परम सत्य है जैसा जॉर्जे मानता था, या सत्य बहुआयामी है जिसे तर्क और अनुभव से धीरे धीरे खोजा जाता है जैसा विलियम का मानना था?
उपन्यास इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। पुस्तकालय के जलने के बाद एडजो कहता है ना कि शायद अंत में हमारे पास सिर्फ नाम, शब्द और कहानियां ही बचती हैं।
हाँ, सत्य के टुकड़े, पूरी सच्चाई नहीं।
और कथा शैली भी इस अनुभव को बहुत गहरा बनाती है। बूढ़े एडजो की आवाज, उसकी यादें, उसका पछतावा, वो हमें कहानी से भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं।
और वो प्रतीक, पुस्तकालय की भूल भुलैया, विलियम का चश्मा, जॉर्गे का अंधापन।
बिल्कुल, और इको जिस तरह बाइबल से लेकर अरस्तु और शर्लॉक होम्स तक के संदर्भों का जाल बुनते हैं, वो दिखाता है कि ज्ञान कैसे हमेशा एक संवाद में रहता है।
अगर भावनात्मक असर की बात करें तो पाठक रहस्य सुलझने पर शायद राहत महसूस करता हो, लेकिन उस पुस्तकालय के जलने का दुख बहुत गहरा होता है।
हाँ, वो ऐसा लगता है जैसे मानवता की साझा विरासत का नुकसान हो गया।
और एडसो की व्यक्तिगत कहानी, उसके पहले प्यार का खो जाना, वो इस बौद्धिक सफर में एक टीस छोड़ जाती है।
शायद वो क्षणभंगुर मानवीय रिश्ता ही उसके जीवन का सबसे सच्चा ज्ञान था जो उसे मिला और फिर खो गया।
ये उपन्यास हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम कई बार अंधकार युग कह देते हैं, वो असल में विचारों, बहसों और गहरे मानवीय जुनून से भरा हुआ था।
और वो सवाल तो आज भी जिंदा है, आस्था और तर्क का संतुलन कैसे बने, ज्ञान की सीमाएं क्या होनी चाहिए, विचारों को दबाने के क्या खतरे हैं।
तो अंततः द नेम ऑफ द रोज सिर्फ एक ऐतिहासिक जासूसी कहानी नहीं है, ये ज्ञान की प्रकृति, उसे पाने की हमारी ललक और उसे दबाने की कोशिशों पर एक बहुत गहरा चिंतन है।
हाँ, ये दिखाता है कि कट्टरता और डर कैसे विनाश ला सकते हैं।
और शायद ये भी याद दिलाता है कि भले ही इमारतें जल जाएं, किताबें राख हो जाएं,
लेकिन विचार प्रेम और स्मृतियाँ वो शब्दों और नामों के जरिए किसी न किसी रूप में जीवित जरूर रहते हैं।
जैसा कि उपन्यास की वो प्रसिद्ध अंतिम पंक्ति कहती है, स्टार रोजा प्रिस्टीना नोमिने नोमिना नूडा तेनेमोस।
प्राचीन गुलाब अब सिर्फ नाम में ही मौजूद है, हमारे पास तो बस खाली नाम है। क्या खूबसूरत अंत है। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।